नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना की जाएगी। प्रदेश में निर्धारित मान्यता एवं शैक्षणिक मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्रों में औषधीय पादपों की खेती किसानों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया बनती जा रही है और प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का क्रम जारी है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश के बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना की जाएगी। इसके बाद 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का चरण चलेगा। वहीं नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प भी दिया गया है, जिसके लिए 16 से 30 नवंबर तक की अवधि निर्धारित की गई है। निदेशक जनगणना ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार जनगणना के दौरान जाति संबंधी आंकड़े जुटाए जाएंगे।
पूरे भारत में जाति की जनगणना पहली बार उत्तराखंड में भी शुरू हो गई, जैसे 4 हिमाच्छादित राज्यों में स्टार्ट हुई है, हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुई है और ये पहली बार है जबकि जातिगत जनगणना हो रही है करीब 1931 के बाद से।
जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि चीन और नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कारण उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की गणना आम नागरिकों से अलग प्रक्रिया के तहत होगी।
क्षेत्र में जनगणना कार्य चल रहा है, कार्य में कुछ ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सामान्य प्रयोग द्वारा कार्य नहीं किया जाता, तो ऐसे क्षेत्र जैसे आर्मी या पैरेंटी फोर्सेस वाले एरिया उनको चिन्हित कर लिया गया है। और जो हमारे 131 विलेज और 3 हमारे नगरीय इकाइयां हैं उनमें केवल हमें 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है ITBP, SSB और BRO इनसे इनके ही चार्जेस की सूचना प्राप्त यहाँ पे हुई है और यही 3 चार्जेस इन वाले एरियाज में है, तो इनकी गणना का कार्य इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी 7 तारीख को ट्रेनिंग होने वाली अपने निदेशालय में, सभी को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया गया है और तकरीबन इसमें चार्जेस है करीब 35 लोगों को हम ट्रेन करेंगे इस कार्य के लिए। और ये कार्य वो जो वैसे डिजिटल रूप में कार्य किया जाना है सारा ये जनगणना का, लेकिन स्पेशल चार्ज के लिए निर्देश दिए गए हैं कॉन्फिडेंशियलिटी और सब चीजों की वजह से कि वो केवल मेंबर जो उनको प्रपत्र दिए जाएंगे उन्हीं में आंकड़े एकत्र करेंगे, उनकी बाद में डेटा एंट्री करवाई जाएगी और बाद में उनको सभी आंकड़ों के साथ मिलाया जाएगा।
प्रदेश में निर्धारित मान्यता एवं शैक्षणिक मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले मदरसों के विरुद्ध राज्य सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में देहरादून और हल्द्वानी में बिना मान्यता संचालित मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि देहरादून में 3 मदरसों के संबंध में कार्रवाई की गई है। इनमें आजाद कॉलोनी स्थित मदरसा जामिया तुस सलाम अल इस्लामिया को सील किया गया, जबकि मदरसा दारे अरकम आजाद कॉलोनी माजरा तथा मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के प्रबंधकों द्वारा मदरसों का संचालन बंद किए जाने संबंधित लिखित प्रतिबद्धता दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 17 मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि 3 मदरसों के प्रबंधकों ने संचालन बंद किए जाने की लिखित सूचना दी है। इस प्रकार अब तक कुल 20 बिना मान्यता संचालित मदरसों का संचालन बंद कराया गया है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
चमोली जिले के सीमांत क्षेत्रों में औषधीय पादपों की खेती किसानों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया बनती जा रही है। नंदानगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में किसान कुट और कुटकी का उत्पादन कर रहे हैं। जड़ी बूटी शोध संस्थान की ओर से भी किसानों को इन औषधीय फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में करीब 150 से अधिक काश्तकार कुट और कुटकी का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें सीधे आर्थिक लाभ मिल रहा है। स्थानीय काश्तकार अब इन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का कहना है कि कुट और कुटकी का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बेहतर विपणन व्यवस्था जरूरी है।
वो जड़ी बूटी की जो महत्वपूर्ण खेती हमारे दो क्षेत्र में की जा रही है, बहुत बड़े पैमाने में की जा रही है, लेकिन इसकी अपार संभावनाएं तभी होगी जब इसमें कुछ जो सरकारी सहायता लोगों को जो है इसमें मिल पाए। और प्लान रुकने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन आज के दिन है पहाड़ों में जड़ी बूटी, तो बहुत शानदार तरीके से लोग चाहे रामणी गाँव है हमारा, एक छोटा सा गाँव प्राणमती, जहाँ बहुत अपार एक व्यवस्था के साथ आत्मनिर्भर रोजगार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से बृहद पैमाने में कूट और कुटकी पे काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से इस प्रकार का कार्य अन्य गाँव में भी जो लगभग 2500 मीटर से ऊपर की जो सी लेवल से होगा उन पे इस प्रकार की संभावनाएं हैं।
जड़ी बूटी शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल के अनुसार चमोली में कुटकी को एक बेहतर वैकल्पिक फसल के रूप में विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं।
चमोली में पहली वैकल्पिक फसल रही है जड़ी बूटी, वो है कुट। हम यहाँ पे चमोली में जो हमारा नंदानगर में भुना एरिया था वहाँ पे 1929 से उसका कृषिकरण शुरू और 1929 से फिर 1960 तक ये चला, लेकिन जब चाइना के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुए क्योंकि यहाँ जो मटेरियल उत्पादन होता था वो सीधे चाइना के लिए एक्सपोर्ट होता था तब थोड़ा कम हुआ, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के बाद फिर हमने उस प्रैक्टिस को रिवाइव किया सन 2000 के बाद से। तो अभी जैसे जो हमारा कनोल का एरिया है तो के एरिया में लगभग 150 किसान हमारे कुट की खेती करते हैं और बहुत बढ़िया उनका उत्पादन।
प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का क्रम जारी है। इस बीच अल्मोड़ा में 3 दिन से लगातार दिन रात वर्षा होने के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई सड़क मार्ग और पैदल मार्ग अवरुद्ध हैं। रानीखेत अल्मोड़ा मोटर मार्ग पर बुबूधाम के पास एक विशाल चीड़ का पेड़ गिरने से मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया, जिससे यातायात बाधित हो गया था। सूचना प्राप्त होते ही फायर रेस्क्यू टीम रानीखेत तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। फायर रेस्क्यू टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात को सुचारू किया गया। नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आईब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की UPI भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में लोक आस्था और प्रकृति पूजन का पर्व लोक पर्व दुबड़ी पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। नैनबाग के अंतर्गत ग्राम मौगी पाब में आयोजित दुबड़ी पर्व में अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने प्रतिभाग कर ग्रामीणों के साथ प्रकृति पूजन एवं लोक परंपराओं में सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति, रीति रिवाज और प्रकृति के प्रति ग्रामीणों की आस्था को करीब से जाना। दुबड़ी लोक पर्व में प्रकृति पूजन की अनूठी परंपरा निभाई जाती है। पर्व के अवसर पर ग्रामीण सार्वजनिक स्थान पंचायत चौक पर एकत्रित होकर एक बड़ा डंडा गाड़ते हैं। इसके बाद ग्रामीण अपने खेतों में उगाई जा रही नई फसल एवं करीब 12 प्रकार के अनाजों के पौधों की पत्तियां लेकर आते हैं और उन्हें डंडे के चारों ओर सजाया जाता है। इस प्रकार फसल पत्तियों से सजाए गए डंडे को दुबड़ी कहा जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के बर्फ से ढके क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनसंख्या गणना की जाएगी। प्रदेश में निर्धारित मान्यता एवं शैक्षणिक मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्रों में औषधीय पादपों की खेती किसानों के लिए रोजगार का बेहतर जरिया बनती जा रही है और प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का क्रम जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।